दिन भर 1 फरवरी शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। चुनाव के पहले मोदी सरकार ने खोला पिटारा, अंतरिम बजट में किसान, कामगार और करदाताओं को लुभाने की कोशिश।
Individual taxpayers having taxable annual income up to ₹5 lakhs.
विपक्ष ने बजट को बताया चुनावी घोषणा पत्र, किसानों के लिए ऐलान पर बोले राहुल गांधी,
आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो।
और शेयर बाजार में उछाल, लेकिन अंतरिम बजट पर क्या कहते हैं आर्थिक मामलों के जानकार।
कंसेशन दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत रोजगार पैदा होगा, 70,000 करोड़ रुपए फार्मर्स को दे रहे हैं, तो इससे जो डिमांड है अर्थव्यवस्था में वो जरूर बढ़ेगी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। भारत में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने आज अपना आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की बात कही गई है। विपक्षी कांग्रेस ने इसे किसानों का अपमान बताया है। अफगान तालिबान ने दोहराया है कि वो अफगानिस्तान की सरकार के साथ कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने बीबीसी से कहा कि वे काबुल में अधिकारियों को वैधानिक नहीं मानते हैं। इससे पहले खबर ये आई थी कि 17 साल से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति वार्ता के प्रारूप पर अमेरिका और तालिबान के बीच सहमति बन गई है। जबीहुल्ला मुजाहिद का कहना है कि तालिबान के शासन में महिलाओं को इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक अपनी भूमिका अदा करने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा,
I must mention that Sharia has its own rules.
मैं ये कहना चाहूँगा कि शरिया कानून अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन महिलाओं की भूमिका जरूर होगी, खासतौर पर चिकित्सा और तालीम के क्षेत्र में, और उनकी मदद भी की जाएगी। अतीत में हमारी सरकार ज्यादा नहीं चली क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी थी। महिलाएं इसी संदर्भ में काम करेंगी और इसे संभव बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये थे तालिबान के एक प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। म्यांमार में सुरक्षा कर्मियों के हाथों नरसंहार की पड़ताल करने वाले रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के 2 पत्रकार उन्हें सुनाई गई जेल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इन दोनों पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई का राजनयिकों और मानवाधिकार समूहों ने विरोध किया है। उन्हें म्यांमार के स्टेट सीक्रेट्स का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट वॉच के एक अधिकारी फिल रॉबर्टसन का कहना है कि म्यांमार की सरकार सेना के प्रभाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा,
Quite clearly the courts here are not independent. The Myanmar military still plays a major role in controlling the situation, the dialogue.
ये एकदम साफ है कि यहाँ अदालतें आज़ाद नहीं हैं। म्यांमार में हालात काबू करने में सेना अभी भी अहम भूमिका अदा कर रही है। रॉयटर्स के इन पत्रकारों ने रखाइन प्रांत में अत्याचार के खिलाफ खबर देकर सेना को गुस्सा कर दिया है। सरकार नहीं चाहती थी कि ये खबर बाहर निकले। ये थे ह्यूमन राइट वॉच के एक अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस ने कहा है कि वेनेजुएला में गहराते राजनीतिक संकट के बीच वेनेजुएला द्वारा अपने स्वर्ण भंडार से कुछ सोना बेचने की कथित खबरों से रूस का कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेनेजुएला अपना सोना कथित रूप से रूस को बेचने की कोशिश कर रहा है। उन्हें इस तरह की किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने वेनेजुएला और किसी तीसरे देश के बीच रूस की मध्यस्थता की खबरों को भी खारिज कर दिया है। अमरीका शीत युद्ध के दौर में हथियारों के नियंत्रण वाले एक अहम समझौते न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से अलग होने की जल्द ही घोषणा कर सकता है। अमरीका का कहना है कि रूस ने क्रूज मिसाइल बनाकर इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। हालांकि रूस इससे इनकार करता है। संभव है कि अमरीका पिछले 6 महीने के लिए समझौते को मानने से इनकार कर दे और फिर मतभेदों को दूर करने के लिए रूस के साथ बातचीत विफल होने पर स्थायी रूप से इस समझौते को तोड़ भी दे। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमरीका यदि समझौते से अलग होता है तो परमाणु हथियार अप्रसार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बड़ा धक्का लगेगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। अंतरिम बजट सरकार के लिए सर्वस्पर्शी है तो विपक्ष के लिए चुनावी घोषणा पत्र।
यह सिर्फ अंतरिम बजट नहीं है, यह देश की विकास यात्रा का माध्यम है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैविंग टैक्सेबल एनुअल इनकम अप टू रुपीज 5 लाख विल गेट फुल टैक्स रिबेट।
ये बजट सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी है।
ये बजट नहीं, ये एक चुनावी घोषणा पत्र है।
ये चुनावी साल है, आम चुनाव करीब है और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेश किया अंतरिम बजट। पूरा बजट चुनाव के बाद आएगा। जिन लोगों ने चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल से लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद लगाई थी वो निराश नहीं हुए होंगे। अरुण जेटली के बीमार होने की वजह से वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे पीयूष गोयल ने किसानों और कामगारों से लेकर करदाताओं तक को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने रक्षा तंत्र मजबूत करने की बात की तो गायों की बेहतरी के लिए भी ऐलान किया। अंतरिम बजट पर सुनिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
पीयूष गोयल की बजट स्पीच लंबी थी, तकरीबन 2 घंटों के आसपास, लेकिन बीच बीच में वो कुछ ऐसी घोषणाएं करते रहे जिससे संसद में और बाहर लोगों की नज़र उन पर बनी रही। सबसे पहली घोषणा अंतिम बजट में हुई किसानों को वित्तीय सहायता देने की।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की। इस योजना के तहत जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है।
पीयूष गोयल ने कहा कि पूरी तरह केंद्र सरकार के फंड से चलने वाली इस स्कीम के तहत पैसे सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे और योजना को लागू किए जाने की तारीख दिसंबर 2018 तय की गई है। उन्होंने कहा कि स्कीम की पहली किस्त यानी 2,000 रुपये जल्द ही लाभार्थियों के खातों में भेज दी जाएंगी। जय किसान का नारा संसद में थमा ही था कि उन्होंने बात कर दी, उनके शब्दों में, गौ माता के सम्मान की।
आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी मैडम स्पीकर टू अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग टू अपस्केल।
महोदया, मुझे बहुत खुशी है इस बात की घोषणा करते वक्त कि सरकार ने एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना का फैसला किया है जो गाय की नस्ल को बेहतर करने के काम की देखरेख करेगी, साथ ही साथ इस बात पर भी नजर रखेगी कि गायों को लेकर जो कानून बने हैं उनका पालन किस तरह हो रहा है। किसानों को फसल का उचित दाम ना मिल पाना, बढ़ती लागत और गिरती आमदनी देश भर में चर्चा का एक बड़ा मुद्दा रहा है और पिछले साल तो 3 बार किसान इन मुद्दों को लेकर दिल्ली में जमा हो गए थे। सरकार ने वित्तीय सहायता और ब्याज के दरों में कुछ बदलाव कर इससे निपटने की कोशिश की है। किसान और गाय के बाद पीयूष गोयल ने रुख किया रोजगार के मुद्दे की तरफ जिसे लेकर मोदी सरकार को बार बार घेरा जाता रहा है।
स्वयं रोजगार की कल्पना अब बदल रही है और रोजगार की भी कल्पना बदल रही है। अब सिर्फ सरकारी नौकरियां और कारखाने में ही रोजगार उत्पन्न नहीं होता है, जॉब सीकर आज जॉब क्रिएटर बन गया है।
उन्होंने कहा कि नए उद्योग धंधों की शुरुआत के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया है। पीयूष गोयल ने फिर रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की।
मैडम स्पीकर, ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि इस वर्ष पहली बार हमारा डिफेंस बजट 3,00,000 करोड़ से बढ़ के 2019-20 में प्रावधान किया गया है।
बजट लगभग खात्मे की तरफ बढ़ रहा था लेकिन उस बात का जिक्र अब तक नहीं आया था जिसका इंतजार टैक्स देने वाले एक बड़े वर्ग को था और फिर अंतरिम बजट में इसकी बात आ ही गई।
इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. तो 6.5 लाख तक भी
कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो।
इस घोषणा के बाद तो सत्ता पक्ष के सांसदों की गर्दनें और तन गई और वो वहां बैठे विपक्षी दलों की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखने लगे। सफेद कुर्ते और जैकेट में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने पड़ी डेस्क को थपथपाते हुए देखा जा सकता था। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
पीयूष गोयल का बजट भाषण खत्म होते ही प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट पर क्या कहा।
ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार टैक्स पेयर का गौरवगान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा, अर्थव्यवस्था को नया बल देगा, देश का विश्वास मजबूत करेगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है, सर्वोत्कर्ष को समर्पित है।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के नेता भी बजट की तारीफ में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने तो इस बजट को सर्जिकल स्ट्राइक 2 बता दिया है, लेकिन हर कोई अंतरिम बजट की तारीफ ही नहीं कर रहा है। विपक्षी दल बजट को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। सुनिए BBC संवाददाता मीना कोटवाल की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार में शामिल पार्टी के बाकी सभी सहयोगी दलों ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे विकास को बढ़ाने वाला बजट बताया है। BJP अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बजट से सभी वर्गों को लाभ मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
सरकार करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए का बोझ सहन कर किसान भाइयों के मदद के लिए खड़ी रहेगी। बैंक के कर्ज की माफी सिर्फ एक बार होती है। बैंक के कर्ज माफ करने से उन्हीं किसानों को फायदा होता है जो ऋण लेते हैं। देश के करोड़ों किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते। करीब करीब 50% किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते हैं, उनको तक भी ये फायदा पहुँचेगा और ये फायदा हर साल पहुँचेगा। ये योजना है, जैसे मनरेगा हर साल होती है, इसी तरह से ये योजना हर साल रहेगी।
वहीं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बजट में किसानों के लिए जो ऐलान किए हैं उन्हें अहम बताया है। राधा मोहन सिंह ने कहा है कि इससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा।
2,000 रुपया सब किसानों के साथ में खाते में जाएगा, लेकिन उसके साथ ही आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है, अब जितने भी जमीन वाले किसान हैं, मत्स्य पालन पशुपालन करते हैं, उनको 3 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड और जो लैंडलेस हैं उनको भी 2 लाख का किसान क्रेडिट दिया जाएगा। और इसी तरह से कि प्राकृतिक आपदाएं जब आती थी तो पहले वर्ष में किसान को जो ब्याज सहायता होती थी अब उसको 5 वर्षों तक के लिए कर दिया।
लेकिन बजट के बाद कांग्रेस किसान के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि बजट में जो घोषणा की गई है वो किसानों का अपमान है।
आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए, अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन 3 मुद्दों पर चुनाव।
कांग्रेस ने बजट में की गई दूसरी घोषणाओं पर भी सवाल उठाए हैं। लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये बजट नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है।
मैं यही कह सकता हूँ कि ये बजट नहीं, ये एक चुनावी घोषणा पत्र है। चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए जो चीजें वो बाहर कहने जा रहे थे या अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताने जा रहे थे, वो सारी चीजें यहाँ सदन में उन्होंने बजट के नाम पर बताया है। अब रिजर्वेशन बजट का क्या वास्ता था?
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने बजट का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इसे दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा है कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक सीमा पर हुई थी, यहां हम मत पत्रों के साथ लड़ेंगे। मीना कोटवाल, BBC दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आज शुक्रवार है और आपको इंतजार होता है विवेचना का, लेकिन आज बजट से जुड़ी खबरों की वजह से हम आपको विवेचना नहीं सुना रहे हैं। आगे हम आपको सुनाएंगे कि आज पेश हुए अंतरिम बजट पर आम लोगों का क्या कहना है और कॉरपोरेट जगत ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी है। लेकिन पहले सुनते हैं कि आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ इस बजट को कैसे देख रहे हैं। बजट के बाद मैंने बात की प्रोफेसर अरुण कुमार से।
लोक लुभावन बजट है जिसमें कि जो इनकी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो परेशानी में आ गई थी, कृषि है और जो यूथ है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एमएसएमई सेक्टर है, मिडिल क्लास है, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। समझ नहीं आ रहा कि इसका गणित क्या है, क्योंकि दे तो बहुत दिया है लेकिन कितना, मतलब उसका जब फाइनेंस करेंगे फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा है वो सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कंसेशन दिए हैं जैसे फार्म का 75,000 करोड़ रुपए दिया है वगैरह, तो अगर ये कंसेशन इतने सारे दे रहे हैं तो उस पर 1,00,000 करोड़ रुपया तो खर्च होगा ही कम से कम, और फिर दूसरी तरफ टैक्स में जो छूट दी है वो 50,000 करोड़ रुपए निकल जाएगा, और जीएसटी में ऐसा लग नहीं रहा कि इतना कलेक्शन बढ़ जाएगा, तो मुझे डर है कि ये फिस्कल डेफिसिट ना करीब 0.75% जीडीपी का बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर ये सरकार वापस नहीं आती है तो फिर नई सरकार है वो बन जाएगी, क्योंकि वो इन चीजों को विड्रॉ नहीं कर पाएगी। मेरा मानना है कि ये करना नहीं चाहिए था इनको इस तरह से, और इनको कोशिश करना चाहिए था कि एक इंटरिम बजट मतलब वोट ऑन अकाउंट करके और फिर नई सरकार आती वो करती, पर जीतने के लिए इन्होंने ये सारे अनाउंसमेंट कर दिए हैं, और इसलिए इसका गणित भी कई जगह सही नहीं है। जैसे कि वो इन्होंने कहा है कि हम पेंशन देंगे, तो पेंशन में मतलब कितना खर्च आएगा वो भी एक सही ढंग से कैलकुलेट नहीं किया है, तो इसका गणित जब डिटेल में देखेंगे तभी समझ में आएगा कि ये कहां से पैसा लेंगे और कितना खर्च कर पाएंगे। या जैसे कि पहले हुआ कि चुनावी जुमला एक तरह से हुआ कि आपने प्रोमिसेस बहुत कर दिए लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे।
मिडिल क्लास तो जो टैक्स में राहत दी गई है उससे खुश दिखता है, लेकिन किसानों को जो राहत दी गई है और वो अमाउंट बताया जा रहा है कि 17 रुपए के लगभग रोज का वो फायदा होगा, तो क्या किसानों को इससे बहुत ज्यादा बदलाव आएगा?
नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो एक मार्जिनल इंक्रीज ही है, पर फिर भी इससे मतलब कुछ तो किसानों को राहत मिलेगी ही, क्योंकि जो किसानी में एक परेशानी का दौर चल रहा है कि उनके प्राइसेस कोलैप्स कर गए, तो कुछ तो इनकम सपोर्ट मिलेगी, पर ये सही बात है कि बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि पहले उम्मीद थी कि शायद 4,000 या 5,000 रुपए प्रति माह मिलेगा या 18,000 रुपए साल मिलेगा, वो आंकड़ा तो नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे परेशानी ये रहेगी कि ये जिसके पास लैंड है लगता है वहां टारगेट हो रहा है, और जिसके पास जमीन नहीं है वो कैसे इसमें लाया जाएगा ये भी साफ नहीं है,
यानी कामगारों का सवाल बरकरार रहेगा।
और जो डायरेक्ट टैक्स में भी जो रियायत दी है वो मिडिल क्लास को तो जरूर दी है, लेकिन पूरा मिडिल क्लास में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 6,50,000 रुपए का मतलब है 6.5 गुना पर कैपिटा इनकम का, वो मतलब करीब 3 करोड़ लोगों को ही फायदा पहुंचा, 30 मिलियन, जबकि लोग कहते हैं मिडिल क्लास 150 मिलियन है, 200 मिलियन है, बाकी जो मिडिल क्लास है उसको कितना फायदा मिलेगा ये जो टैक्स कंसेशन अनाउंस किए हैं उसमें क्लियर नहीं है।
एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि सीधे तौर पर फायदा देने की कोशिश की गई है, खूबसूरत तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन बड़ा सवाल जिसको लेकर मोदी सरकार को लगातार घेरा जाता था नौकरियों का, क्या नौकरियां इस बजट के बाद बढ़ती दिखती हैं?
सरकार तो यही कहेगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे नौकरियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जो भी कंसेशन दिए गए हैं उसका फायदा ऐसा नहीं कि जो बहुत छोटे लोग हैं उनको पहुंचेगा या इससे बहुत रोजगार पैदा होगा या इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिरा हुआ है पिछले 4-5 साल से। पर एक चीज जरूर है कि ये जो 70,000 करोड़ रुपए फार्मर्स को दे रहे हैं बाकी और चीजों में दे रहे हैं, तो इससे जो डिमांड है अर्थव्यवस्था में वो जरूर बढ़ेगी, और डिमांड के बढ़ने से थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, पर लेकिन जो समस्या है कि 2 करोड़ नौकरियां पैदा करनी है वो कहीं नजर नहीं आता।
चुनावी बजट है तो क्या ये जिस तरह तस्वीर सामने आई है इसका कुछ फायदा चुनावों में होता दिखेगा सरकार को, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर लगातार ये सरकार मुश्किलों में ही दिखी है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस समय जनता में एक ट्रस्ट का डेफिसिट है, क्योंकि कई चीजें जो पहले अनाउंस की गई थी वो फुलफिल नहीं हुई हैं। और एक चीज और मुझे जो लगती है कि जो राहुल गांधी ने मिनिमम गारंटी इनकम की बात की थी उससे सरकार पे प्रेशर और पड़ा कि वो इस तरह की चीजें और अनाउंस करे।
अंतरिम बजट का विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार।
बीबीसी इंडिया पोल।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की, लेकिन क्या मोदी सरकार का आखिरी बजट उनकी चुनावी नैया को पार लगा पाएगा? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 2 फरवरी शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
पीयूष गोयल ने अपने बजट में करदाताओं को भी फायदा दिया है। उन्होंने आयकर छूट की सीमा को बढ़ा दिया है। करदाताओं को कैसे और कितना लाभ मिलेगा, ये जानने के लिए मैंने बात की टैक्स मामलों के विशेषज्ञ डी के मिश्रा से।
जैसा हम जानते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार बहुत गंभीरता से बात कर रही थी और मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं अपेक्षाएं सरकार से थी कि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बचे। सरकार ने उस सीमा जो 2.5 लाख तक टैक्स न लेने की सीमा थी उसको बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया। इसका आशय ये हो गया कि अब 5 लाख तक आय करने वाले व्यक्ति कोई भी सरकार को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका दूसरा अभिप्राय ये है कि उनकी जेब में हर माह 1,125 रुपये यानी कि सालाना 12,500 रुपये और अतिरिक्त बचेंगे। नंबर दो, इसके बाद भी सरकार ने कुछ और मूलभूत परिवर्तन किए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास के लिए पिछले वर्ष 40,000 रुपये किया गया था, जिसको सरकार ने बढ़ा के अब 50,000 रुपये कर दिया। इसका मतलब एक सैलरीड क्लास व्यक्ति को एक बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के या निवेश के 50,000 रुपये तक यूं ही छूट दे दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्लैब, जिस भी स्लैब में है उसको 50,000 रुपये दिया ही जाएगा। इसके अलावा जो निवेश की सीमाएं हैं, जो पहले ATC में निवेश कर इन्वेस्टमेंट्स करके या एजुकेशन पे ट्यूशन फीस पे जो छूट थी देने पे या इंश्योरेंस पॉलिसीज पे थी या हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात थी, ये सब सम्मिलित करके 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी, वो यथावत रहेगी, वो अतिरिक्त रूप से छूट मिलेगी।
यानी 7 लाख रुपए तक आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है।
अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो 7 लाख रुपए तक की आय पे कोई टैक्स नहीं देना होगा,
और बशर्ते आप बचत करते हैं।
बशर्ते आप 1.5 लाख रुपए की बचत करते हैं, और बचत नहीं करते हैं तो 5.5 लाख रुपए तक की सैलरीड क्लास के लिए। नॉन सैलरीड क्लास के लिए 50,000 रुपए नहीं मिलेगा, तो उनके लिए 6.5 लाख रुपए तक बचत करके कोई टैक्स नहीं देना होगा।
जी, सरकार ने जिन लोगों के पास 2 मकान है उनको भी राहत देने की बात की है, ये किस तरह की राहत है?
पिछले बजट में ये प्राविधान लाया गया था कि अगर किसी आयकर दाता के पास 1 से ज्यादा मकान है तो दूसरे मकान पे उसको नोशनल इनकम पे, अगर मान लीजिए उस एरिया में जो भी रेंट है या उसका एक फेयर मार्केट वैल्यू रेंटल वैल्यू की पे टैक्स लिया जाता था, वो एक तरह से अड़चन का भी कार्य करता था, क्योंकि ऐसे बहुत से वेतनभोगी थे जो एक प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए जाते थे, तो दोनों जगह मकान होने पे इस तरह की दूसरे किसी एक मकान पे इस तरह की असुविधा थी, उस पे इनकम ना हो फिर भी एक नोशनल इनकम बना के सरकार टैक्स लेती थी। एक विरोध का कारण भी था और इसको लेके रिजेंटमेंट भी था पब्लिक के बीच में और वेतनभोगियों के बीच में या आयकरदाताओं के बीच में, उसको सरकार ने अब ठीक कर लिया है। ये बोला कि अगर आपके पास 2 मकान हैं तो दूसरे मकान पे जो नोशनल इनकम पे हम टैक्स लेते थे अब आगे से नहीं लेंगे।
ये थे टैक्स मामलों के विशेषज्ञ डी के मिश्रा। हम बता दें कि आप BBC हिंदी के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि अंतरिम बजट में किस वर्ग को क्या फायदा मिला है। और अब आपको सुनाते हैं कि बजट पर आम लोगों का क्या कहना है। पटना में नीरज प्रियदर्शी, जयपुर में नारायण बारेट, रायपुर में आलोक पुतुल, रांची में रवि प्रकाश और भुवनेश्वर में संदीप साहू ने आम लोगों की राय जानी।
बजट की सबसे खास बात ये रही कि 2.5 लाख से 5 लाख पे टैक्स फ्री हो गया है, इससे मार्केट में ग्रोथ आएगा, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बजट ठीक ठाक,
2.5 लाख से बढ़ के 5 लाख पे टैक्स फ्री हो गया, ये बहुत अच्छा रहा। खासकर जो बच्चे बाहर नई नई जॉब कर स्टार्ट किए हैं वो लोग का पैकेज 4 लाख होता है, जिसमें टैक्स दे तो लोग बचता क्या।
हाँ देखो, कुछ तो फायदा होगा लेकिन ज्यादा नहीं कह सकते।
काश्तकारों को जो फायदा दिया साल के 6,000 रुपए, ये काश्तकारों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गरीब काश्तकार होता है, कर्जे में दबा रहता है।
इस बजट से मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। 2.5 लाख का जो आयकर स्लैब था उसको बढ़ा के 5 लाख करने से आम आदमी ने राहत महसूस की है।
भाई सरकार को क्या है ना कि जो 20% का स्लैब है उसको 7.5 तक 10% का करना चाहिए था, और 7.5 से ऊपर 20 का 10 तक, बाकी फिर भी अच्छा स्टेप है।
उसका पता ही नहीं है हमको कैसा बजट दिया।
गलत आंकड़ों पर आधारित ये बजट है, और यह बजट ऐसा बजट है कि जिसमें किसान को तो साल में 6,000 रुपए सालाना दिया जा रहा है, उसी तरफ एक मजदूरों को कहा जा रहा है कि हर महीने उन्हें 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। तो एक तरफ मजदूर के लिए वो कह रहे हैं कि हम 36,000 रुपए देंगे और किसानों के लिए 6,000, वो भी 3 किस्तों पर।
इस बजट में हम महिलाओं के लिए कहाँ जगह है? ना हम महिलाओं के लिए कोई जगह है, ना पिछड़ा तबके के लिए कोई जगह है, ना आदिवासियों के लिए जगह है। मतलब जो समाज के सबसे कमजोर लोग हैं उनके लिए इस बजट में कोई स्थान।
जिसमें आज तक कभी भी कोई गवर्नमेंट आज तक मजदूरों के विषय में कभी इस प्रकार का सोच नहीं रखती। जिस प्रकार से मोदी जी 3,000 रुपए मजदूरों को मासिक पेंशन देने की जो योजना बनाए बहुत ही सराहनीय कदम।
किसान बंधु है उनके लिए जो प्रावधान किया है कि 6,000 रुपया सालाना
के खाते में डाला जाएगा निश्चित रूप से।
पैसा ब्याज जो देने खोज रहा है महिला का 40,000 रुपया उसका ब्याज साल भर नहीं लेंगे कर रहा है तो अच्छा बात।
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लेबर क्लास के लिए जो कि पेंशन स्कीम 3,000 के लिए बजट में रखा है प्रोविजन वो थोड़ा डाउटफुल रहेगा।
और अब बात कारोबार जगत की। बजट के बाद शेयर बाजार में तेजी देखी गई लेकिन कारोबार जगत के लोग बजट को कैसे देख रहे हैं ये जानने के लिए सुनिए भूमिका राय की रिपोर्ट।
बजट की सबसे खास बात रही आयकर में छूट। पीयूष गोयल के बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार में 366 अंकों का उछाल आ गया। पीयूष गोयल ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि 2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4% रहने का अनुमान है जबकि वित्तीय घाटा मौजूदा समय में 2.5% है। अगर बात करें उद्योग जगत की तो ज्यादातर लोगों ने इसे लोक लुभावन बजट ही बताया है। फिके इंडिया ने ट्वीट किया है, हम महसूस करते हैं कि बजट 2019 एक सकारात्मक बजट है। ये बजट कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में मददगार साबित होगा, उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देगा और इस तरह निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी बजट को मिडिल क्लास और किसानों के लिए राहत भरा बताया है। फिक्की से जुड़ी और टचस्टोन जेम्स एंड ज्वेलर्स की अर्चना गरोड़िया गुप्ता कहती हैं,
देखिए ये चुनावी बजट है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करने की कोशिश करी गई है। 12 करोड़ फार्मर, 3 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स, उनको इमीडिएट कुछ कैश बेनिफिट मिलेगा और बाकी चीजों में अभी कुछ खास पॉलिसी में या कोई एमएसएमईज के लिए या इंडस्ट्री के लिए अभी इन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए इस बजट। ये दूसरी बात है कि आप समझिए 75,000 करोड़ जो रूरल स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी और लगभग 20,000 करोड़ टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलेगा। ये पैसा एक तरह से डिमांड स्टिमुलस होगा तो लोकल इंडस्ट्री की उतनी रिक्वायरमेंट या डिमांड बढ़ जाएगी।
लेकिन ये बजट कारोबारियों के लिए कैसा है?
उद्योगपतियों के लिए या उद्योग कारोबारियों के लिए कोई खास पॉलिसी नहीं की गई है। जो एक जनरल अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी उसका जो बेनिफिट होगा वही बेनिफिट होगा उनको। इनकम टैक्स जो इन्होंने करा है कि असेसमेंट ई असेसमेंट होगा उससे जो छोटे व्यापारी हैं उनको थोड़ा आराम रहेगा, कंप्लायंस में उनको आराम मिल जाएगा।
वहीं फिच इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके पंत का मानना है कि ये एक राहत देने वाला बजट है। वो कहते हैं,
इस बजट में आपको किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ राहतें देखने को मिली हैं और जब ये पैसा इन लोगों के पास पहुंचेगा तो जैसे कि आपने देखा कि 5 लाख तक जिनकी आमदनी है उन्हें उनके लिए इनकम टैक्स जीरो कर दिया गया है। ये सब चीजें जब पैसा जब बाजार में आएगा तो मांग बढ़ेगी।
लेकिन पंत ये भी कहते हैं कि इस बजट में कारोबारियों के लिए सीधे तौर पर तो कुछ भी नहीं था लेकिन फायदा उन्हें होगा। वो कहते हैं,
देखिए कारोबारियों के लिए अगर आप डायरेक्टली देखें तो उसमें क्योंकि मांग बढ़ेगी उससे कारोबारियों को असर पड़ेगा क्योंकि ये इंटरिम बजट था, इसमें जनरली क्या है आपको टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं देखते तो कारोबारी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स पे क्या होगा और वो हमको देखने को मिलेगा जो भी उसके में सरकार जो भी कदम उठाती है वो जब पूरा बजट फुल बजट जब जून या जुलाई में आएगा उसमें समय देखने को।
हालांकि विशेषज्ञ ये जरूर मानते हैं कि ये एक चुनावी बजट था, ऐसे में मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा गया है और कारोबारियों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर तो कुछ नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर है क्योंकि मांग बढ़ेगी तो फायदा इस वर्ग को भी होगा। भूमिका राय, नई दिल्ली।
हम बता दें कि आज से ही सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में 10% आरक्षण भी लागू हो गया है। इस आरक्षण का लाभ पाने के लिए सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये शर्त रखी गई है। जब 10% आरक्षण के प्रावधान लाए गए थे तब भी ये सवाल उठा था कि जब 8 लाख रुपए तक की आमदनी वाले 10% आरक्षण का लाभ ले सकते हैं तो आयकर की छूट केवल 2.5 लाख रुपए तक की आय पर ही क्यों है। अब बजट में आयकर की सीमा को यानी कर मुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है लेकिन वरिष्ठ नागरिक 10 लाख रुपए सालाना की आय तक आयकर में छूट पा सकते हैं और बाकी लोग 9,35,000 रुपए की आय तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर वो बचत करते हैं। तो वो बचत कैसे करें अगर आप जानना चाहते हैं तो आएं bbchindi.com पर और पढ़ें बीबीसी संवाददाता अभिजीत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। और अब चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, माफ कीजिएगा मुख्य समाचार हम आपको नहीं सुना पा रहे हैं। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।